22 अप्रैल जैन स्थानक कैलाशंगा, ऋषभदेव का पारणा दिवस, आचार्य भगवान का 18वां आचार्य पद दिवस, महात्मा जी महाराज सा का 18वां दीक्षा दिवस, आचार्य श्री को जिनवानी के अनूठे समर्थ उद्घोषक का सम्मान दिया गया। पारणा महोत्सव कालचक्र के इस अवसर पिनी काल में जो 24 हुई हैं, उसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव ने केवल तीर्थ का प्रवर्तन ही नहीं किया, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। यह कार्य ऋषभदेव के अतिरिक्त अन्य किसी भी तीर्थंकर ने नहीं किया। जब युगलिक काल में देश काल के प्रभाव से कल्पवृक्षों ने फल देना कम कर दिया और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब कल्पवृक्षों ने फल देना ही बंद कर दिया, लोग भूखे मरने लगे, उस दिन हमारी धरती पर पुरुषार्थवाद ने जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव ने संदेश दिया, दूसरों के सहारे जीने की कोशिश मत करो। उनका जमीर जगाया, उन्हें कहा, आज तक तुम कल्पवृक्ष के सहारे निष्कर्मण्य बन गए थे, निष्कर्मण्यता को खत्म करो। भगवान ने उस पीढ़ी को खेती करना, भोजन बनाना, मेहनत करना सिखाया और दुनिया को बताया, तुम जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे तो जिंदा रहोगे। कोई भी समस्या हो, तनाव हो, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान के द्वारा प्रतिपादित पुरुषार्थवाद से आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मंजिल नहीं मिलती तो दूसरा रास्ता भी बताया। धर्म प्रवर्तन करने के साथ साधु साध्वी श्रावक श्राविका चार तीर्थ की व्यवस्था दी। सामायिक, प्रतिक्रमण, 10 पच्चक खान आदि समझाएं, जिससे तुम्हारी अटके हुई परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और फिर यदि समाधान नहीं होता है तो भगवान ने कहा, जो कर्म आपको भव भव में भोगने पड़ते, कभी कुत्ते कभी बिल्ली आदि पशु बनकर जो भोगने पड़ते, उन कर्मों को संभाव से इसी भाव में भोग लेंगे तो इसी भाव में उन कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष नजदीक हो जाएगी। भगवान ने केवल तीर्थ का प्रवर्तन ही नहीं किया, इस अवसर पिनी काल का प्रवर्तन किया है। भगवान ने एक एक समस्या का समाधान संकेत के रूप में बताया है। जैसे रामायणी लोग रामायण की कथा करते हैं, वैसे हमें भी ऋषभदेव भगवान, भगवान महावीर स्वामी, भगवान शांतिनाथ, चंदन बाला आदि का जीवन सुनना चाहिए। सुनने से कुछ मिले या न मिले, कर्मों की महान निर्जरा होती है। भगवती सूत्र में भी कहा है, श्रमण महान का नाम सुनने मात्र से महान कर्मों की निर्जरा होती है। छद्मस्थ अवस्था में भगवान घर घर में भिक्षा के लिए घूम रहे थे। कोई उन्हें घोड़ा देता, कोई उन्हें हाथी, तो कोई संपत्ति दे रहा, लेकिन भगवान उन सबको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते चले जा रहे। एक दिन बीता, दो दिन बीतते, दो महीने बीते, लेकिन भगवान को अन्न का एक कण तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। भरत क्षेत्र के लोग ही क्या, देवलोक के देवता भी भयभीत हो गए। भगवान का संकल्प, ध्रुव प्रतिज्ञा इतनी मजबूत थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। 13 महीने 10 दिन व्यतीत हो गए, शरीर निर्बल हो गया, काया निस्तेज हो गई, किंतु आत्मबल बढ़ता चला गया। हजारों लाखों भक्त चरणों में झुके रहे, करोड़ों देवी देवता निरीह आँखों से देखते रहे, सोच रहे कि करे तो क्या करें। 3 लोक के स्वामी नंगे पैर नंगे सिर हस्तिनापुर के राजमहल के आगे से निकल रहे थे। राजमहलों में मीटिंग चल रही थी, राजा मंत्री सेठ दरबारी गण और श्रेयांश कुमार चर्चा कर रहे थे। श्रेयांश कुमार, जो कि भगवान ऋषभदेव का प्रपौत्र था, उसने कहा, मैंने स्वप्न देखा कि सोने की तरह चमकने वाला मेरु पर्वत श्याम हो गया, मैंने अमृत का सिंचन करके पुनः चमका दिया। तभी सोमप्रभ राजा, जो कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली उनके पुत्र थे, वो बोले कि स्वप्न में मैंने एक वीर योद्धा देखा जो हजारों लाखों योद्धाओं पर भारी पड़ता है। ऐसे वीर को चारों तरफ से लोगों से घेर लिया है। ऐसी विकट परिस्थिति में श्रेयांश कुमार ने उसकी सहायता करके उसे विजयी बना दिया। उसी सभा में बैठे सुबुद्धि नामक नगर सेठ ने कहा, आज मैंने स्वप्न में देखा कि सूर्य की हजारों किरणें टूटकर नीचे गिर गई। आश्चर्य, हमारे राजकुमार श्रेयांश ने किरणों को उठाकर वापस लगा दिया। एक ही व्यक्ति के लिए 3 व्यक्तियों को स्वप्न आया, इसका क्या अर्थ यह तो नहीं पता है, किंतु लगता है श्रेयांश कुमार के हाथों से कुछ न कुछ अच्छा कार्य जरूर होगा। मीटिंग की समाप्ति के पश्चात श्रेयांश कुमार गवाक्ष में आकर खड़ा हो गया। उसने सामने से भगवान ऋषभदेव को आते देखा उसने सोचा इस वेश को मैंने कहीं देखा है। ऐसी सौम्यता, ऐसा तेज, इस प्रकार का चलन मैंने कहीं देखा है। चिंतन करते करते जातिस्मरण ज्ञान हो गया। ओह, यह ऋषभदेव भगवान की आत्मा से मेरा पिछले 10 भवों से संबंध है। जब भगवान वज्रनाभ चक्रवर्ती के भव में थे तब मैं उनका सारथी था। सब कुछ समझ आने लगा। भगवान ने संपत्ति को छोड़कर संन्यास लिया है। आज वो एक आदर्श के रूप में हमारे सामने सब कुछ छोड़ गए। एक न एक दिन सब कुछ छोड़कर सभी भव्यात्माओं को साधु तो बनना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म में भी अंतिम अवस्था संन्यास ही बताया है। अतः आज नहीं तो कल साधु तो बनना ही पड़ेगा। कई बार व्यक्ति को खुद को संयम लेना नहीं होता और साधुओं पर कलंक लगाते हैं। इस साधु में फला कमी है, उस साधु में फला कमी है, इस तरह दिमागी एडजस्टमेंट करते हैं। साधु स्वयं को बनना नहीं है, बस साधुओं की टीका टिप्पणी करके यह कह देंगे। ऐसे में गृहस्थ जीवन ठीक है। ऐसे धर्म के नाम पर वो लोग धुंध रचते हैं। दीक्षा लेने वाला दूसरों को नहीं देखता। प्रवचनों में दीक्षा लेने की लंबी लंबी घोषणा कर देते हैं, पर करना धरना कुछ नहीं। ऐसे लोग धर्म के साथ धोखा करते हैं। होना चाहिए कि प्राण जाए पर प्राण नहीं जावे। साधु नहीं बनना है तो मत बनिए, किंतु साधुओं की निंदा करके महामोहनीय कर्म बांधने से बचें। जातिस्मरण ज्ञान होने पर श्रेयांस कुमार रसोई घर की तरफ गया। वहां कुछ भी फ्रासुक नहीं पाकर पुनः बाहर आया तो देखा अभी अभी खेतों से इक्षुरस के 108 कलश उतरे हैं। साथ ही मन में विचार आया, यह त्रिलोकीनाथ है, इनको हम क्या दे सकते हैं। लोक के नाथ हैं, तनाना तारियाना है। नीची नजरे करके प्रभु को इक्षु रस के कलशों से पारणा कराया। प्रभु ने भी भिक्षा लेते समय फालतू के प्रश्नोत्तर नहीं किए। गृहस्थों से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उत्कृष्ट क्रिया का प्रदर्शन करने वाला, उनसे झूठ बुलवाने वाला खुद तो डूबता ही है, दूसरों को ले डूबता है। इसलिए शास्त्रों में कहा, गोचरी गया साधु विचक्षण होना चाहिए। जो साधु की क्रियाओं का फूहा आडंबर करके अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं वो साधु जीवन को पालकर भी संसार बढ़ाते हैं। भगवान ने कर पात्र में इक्षु रस को ग्रहण कर 13 महीने 10 दिन के तप का पारणा किया। सर्वत्र शांति तृप्ति की प्राप्ति हुई। इस समय पूरे वर्ष की तपस्या एक साथ करने का सामर्थ्य न होने से एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास करके 2 वर्ष में वर्षी तप करने की पूर्णता की परंपरा चल पड़ी। फिर एकासना एकांतर करने वाले भी आए, उनका वर्षी तप 4 वर्ष में पूरा होना है। कई कई आदर्श ऐसे हैं जो 9 वर्ष से लगातार एकासना कर रहे हैं। वो है धर्मवीर नररत्न श्री सागरमल जी जैन मंदसौर, इसी तरह अरिहंत स्टार श्री रतनलाल जी जैन जालंधर की धर्मपत्नी महिला रत्न श्री शीला जी जैन 21 वर्ष से एकासना तप कर रही हैं। यह सब हमारे महासंत के गौरव हैं। इसी तरह तरुण तपस्विनी श्री प्रवीणा श्री जी महाराज साहब करीब 22 वर्ष से गुरुदेव की प्रेरणा पाकर वर्षी तप कर रही हैं। आदर्श त्यागिनी तरुण तपस्विनी श्री सिद्धि श्री जी महाराज साहब 9 वर्ष से आयंबिल का एकांतर तप कर रही हैं। इसी तरह तरुण तपस्विनी महासाध्वी रत्ना श्री शुचिता श्री जी महाराज साहब, आत्मली विदुषी साध्वी रत्ना श्री अमिता श्री जी महाराज साहब, सुदीर्घ तपाराधिका विदुषी साध्वी रत्ना श्री आराधना श्री जी महाराज साहब के भी एकासना उपवास आदि विभिन्न तपस्याएं वर्षों से जारी है। हम आज इन सबको ससम्मान स्मरण करते हैं एवं इनकी सुदीर्घ तप आराधना हेतु शुभकामना समर्पित करते हैं। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज की महिलाएं हो या पुरुष, सभी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है वर्षी तप, जो आपके तन मन को स्वस्थ करता हुआ आत्मा को पावन बनाता है। वर्षी तप की भावना बनाएं। भारी मात्रा में हाथ खड़े करके लोगों ने वर्षी तप करने की स्वीकृति दी। ये तो मैं आपको बता ही चुका। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंत किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय मत पंथ की धरोहर नहीं है। जो भी अरिहंतों पर विश्वास रखते हैं, उनकी समाचारी के अनुसार चलते हैं, उन सबका महासंत है। आप भी जुड़िए और जन कल्याण में आगे बढ़िए। इसी के साथ में एक बात और कह देना चाहता हूँ। 1993 के चांदनी चौक दिल्ली के चातुर्मास से लेकर आज तक पूरी भक्ति निष्ठा समर्पणा भाव के साथ महिला रत्न श्रीमती सुनीता जी जैन, जिनका आपके कैलाश नगर में पीहर है। वो महासंत की बड़े प्रफुल्ल और निस्वार्थ भावों से सेवा कर रही हैं। उनकी सेवाओं को देखकर दिल में एक बात उठी कि गुणियों का सम्मान होना चाहिए। तो मैं आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री सुनीता जी जैन चांदनी चौक को अरिहंत मणि के विशेषण से सम्मानित करता हूँ। इसकी घोषणा के साथ ही पूरी सभा में हर्ष हर्ष जय जय के नारे गूंज उठे। हमारे अनुभूति प्रज्ञा श्री दिनेश जैन गुणिशु प्रमोदम की भावना से प्रेरित होकर बहन सुनीता जी की जय जयकार करके वातावरण को और भी सुखद और उत्साही बना दिया। हमारे जयचंदा जी तो किसी के गुण गाने में सदा बहार है ही। इसी के साथ श्री अरिहंतमार्गी महिला महासंघ राष्ट्रीय की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री मुमुक्षु महिला रत्न श्री नीलिमा जी जैन ने सुनीता जी का स्वागत अभिनंदन करके सभी को समाज सेवा करने के मूर्त रूप से प्रेरित किया। आचार्य प्रवर ने अपना प्रवचन जारी रखते हुए आगे कहा कि हमारे साधु संघ की शान श्री महात्मा जी महाराज सा ने भी आज के दिन ही दीक्षा ली थी। आपके ही विशेष प्रयत्नों एवं शास्त्रीय विधि को याद दिलाकर मुझे विवश होकर आचार्य पद स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद आपने संयम जीवन लेकर वृद्धावस्था में भी संयम जीवन पालन करने की अनूठी प्रेरणा दे रहे हैं। 67 वर्ष में दीक्षित हुए आज 84 वर्ष की उम्र है। इस दरमियान आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुंबई, हैदराबाद आदि अनेक देश प्रांतों की हजारों किलोमीटर की पदयात्रा संपन्न करके अपने को तप त्याग में झोंककर अपनी आत्मा को तो पावन बनाया ही है और सभी के लिए प्रेरणा पुंज बन गए। आज उनकी दीक्षा जयंती पर मैं उनके स्वास्थ्य एवं संयम के प्रति शुभकामना समर्पित करता हूँ। अभी भी बीकानेर से विहार कर आप दिल्ली पधारे हैं। धन्य है आपकी साधना को, जिनकी दीक्षा ने पूरे देश में संयम का महत्व जता दिया। वही स्थिति अब महिला रत्न नीलिमा जी भी रिद्धि समृद्धि, पति, पैसा, परिवार सब कुछ छोड़कर साधना के पथ पर बढ़ने जा रही है। धन्य है इनके त्याग और संयम के भावों को कि महिलाएं आती हैं कि मेरी पति से नहीं बनती, बेटे की शादी नहीं होती, घर में कलेश है, बीमारी है, बस इसके लिए मंत्र चाहिए। मंत्रों से पूरा छुटकारा नहीं होना है, एक ही मार्ग है, संयम जीवन आप भी अपनाएं। आज हम महासंघ के शिखर पुरुष श्री अनूपचंद जी साहब सेठिया को भी सम्मान के साथ याद करते हैं, जिन्होंने तन मन धन सब कुर्बान करके इस महासंघ को बनाया है। बातें बहुत है, फिलहाल मैं अब विराम देता हूँ। आप सभी ने जिनवानी की प्रस्तुति का एक विशेष दायित्व जो सौंपा है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिनवानी की आज के युग में आगम सम्मत अभिनव विवेचना जनता के सामने आए और वह जिनवानी के माध्यम से भगवान महावीर से रूबरू हो। मुमुक्षु बहनों की एवं वर्षीता पारने वालों की भव्य शोभायात्रा श्री एस एस जैन सभा, तरुण जैन मंडल, एस एस जैन महिला मंडल कैलाश नगर दिल्ली एवं इनसे जुड़ी सभी संस्थाओं के सदस्यों ने पूरे जोश होश और तन मन धन से कार्यभार संभाला। अग्रवाल धर्मशाला से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। मुमुक्षुओं बहनों को अलग अलग सुसज्जित बगियों में शोभित किया गया। इसके पीछे वर्षीतप के पारणा करने वालों की बगियों को सुसज्जित कर गतिमान किया। इसके साथ हजारों की संख्या में भाई बहन शोभा यात्रा की गरिमा बढ़ा रहे थे। अनूठा जोश, गगनभेदी नारे, सात्विक मन मयूर का नाचना सभी के लिए आकर्षक रहा। जब शोभायात्रा जैन स्थानक पहुंची तो कुछ ही देर में उसने एक विशाल सभा का रूप ले लिया। सबसे पहले मुमुक्षुओं को एस एस जैन सभा एवं अन्य अनेक संस्थाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर 50 भाई बहिने स्वागत एवं दीक्षा अनुमोदन के गीतों से वातावरण को वैराग्यमय बना दिया। जब अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब आचार्य प्रवर का नीचे पदार्पण हुआ। सीढ़ियां उतरने के साथ ही भक्तों ने गगनभेदी नारों से हॉल गुंजा दिया, क्योंकि आज ही के रोज आचार्य भगवान आज से 17 वर्ष पहले आचार्य पद का दायित्व वहन किया था। गत 17 वर्षों में आचार्य भगवान ने हजारों हजार किलोमीटर की पदयात्रा करके श्री अरिहंतमार्गी जैन महासंघ को देश के कोने कोने में फैलाकर एक नई पहचान प्रदान की। आचार्य प्रवर प्रखर प्रतिभा, उत्कृष्ट संयम एवं विलक्षण वाग्मिता का हर व्यक्ति कायल रहा है। आचार्य प्रवर के पदासीन होने के साथ ही आगे कार्यक्रम चला, जिसमें भंवरीबाई हीराउत ने आचार्य प्रवर के आचार्य पद पर नाना गुरु के प्राण देवा बधाए आज भजन द्वारा अपने भाव रखें। महिला मंडल ने भक्ति गीत प्रस्तुत किया। इसके अलावा और भी महिलाओं ने अपने भाव रखे। संजय जी मुकीम ने कहा, आचार्य प्रवर के जितने गुण गाए कम है वो मेरे परम उपकारी हैं, उन्हें स्वर्ण दीक्षा दिवस की उपमा देना भी बोनापन है। ये तो वो पारस है जिसके टच से लोहा भी सोना बन जाता है। हम आपके युग युग सानिध्य की कामना करते हैं। अजीत प्रसाद जी ने, छाए काली घटाएं तो क्या तेरे आंचल के नीचे रहूं। भजन द्वारा आचार्य प्रवर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त किया।